मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, साथ रह रहे हैं, बरसों गुजर गए, हो जाती है चटक पटक, हो गई कोई बात बुरी लग गई तो झगड़ा भी हो गया, लेकिन अब हम क्यों जाएं किसी मुफ्ती के पास, किसी आलिम के पास कि भाई हमारा रिश्ता रहा कि नहीं रहा। अगर हम दोनों राजी खुशी रहना चाहते हैं और कभी गुस्से में कोई ऐसी बात निकल गई तो आप कौन होते हैं ये फैसला करने वाले?
देखिए मियाँ बीवी राशि, तो मियाँ बीवी तो होना वो
सही,
ठीक है। अब अगर मियाँ बीवी ही नहीं रहे तो अब काजी साहब हो या ना हो, वो उनको बाहर कुछ करना ही पड़ेगा, अपना को सोल्यूशन निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। बात यह है कि भाई ये मियाँ बीवी बने कैसे, इनके बनने का एक तरीका था, वो तरीका था निकाह,
ठीक है।
इनको कैसे पता चला कि ये एक जो एक दूसरे पे हराम थे अब वो एक दूसरे के लिए हलाल हो गए? इसलिए कि इनको इस्लाम ने, इनके दीन ने बताया कि निकाह वो तरीका है कि जिसके जरिए अजनबी मर्द औरत एक दूसरे पे हलाल हो जाते हैं,
ठीक है।
अब जिस दीन ने इनको ये बताया कि अजनबी मर्द औरत निकाह के जरिए हलाल हो जाते हैं, वही दीन इनको ये बताता है कि तलाक की वजह से दोनों एक दूसरे पे हराम भी हो जाते हैं।
सही।
तो क्या ये हो सकता है कि वो एक चीज को तो माने दूसरे को ना माने? ना तो निकाह के जरिए हलाल होने की बात इनको उलमा ने बताई थी या उलमा ने ये कोई दीन घड़के उनके लिए रखा था, और ना तलाक के जरिए हराम होने को कोई उलमा ने घड़के इनके सामने बयान किया था। निकाह के जरिए हलाल हुए तो ये इनके दीन ने इनको बताया था, तलाक के जरिए ये एक दूसरे पे हराम हो गए तो ये इनका दीन ही इनको बता रहा है,
ठीक है।
लेकिन चूंकि इनको अपने तौर पे मालूमात नहीं है, तो जहां मालूमात नहीं है वहां पर हर बंदा साहिब मालूमात के पास जाता है, साहिब इल्म के पास जाता है, और दीनी मामलात के अंदर जो इल्म वाले हैं उनको उलमा कहते हैं, उनको मुफ्तियाने किराम कहते हैं, लिहाजा ये उनसे पूछने जाएगा। वरना अगर ये आपस में तलाक के बाद भी यही कह रहा है कि जनाब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, तो भाई निकाह से पहले भी यही बोल देते, फिर निकाह से पहले भी यही कर लेते कि भाई जब लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी, आखिर मियां बीवी की वहां पर पख लगाना क्यों जरूरी है, लड़का लड़की कर दें कि लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी। तो जो गैर मुस्लिम है वो तो यही कहते हैं, वो तो यही कहते हैं कि भाई शादी निकाह ये कोई जरूरी नहीं है, लड़का लड़की राजी है तो ठीक है, लेकिन फिर वो इस्लाम नहीं है।
अगर इस्लाम है तो उसकी बाउंडिंग्स
हैं, अगर इस्लाम है तो फिर उसकी बाउंडिंग।
निकाह और मैरिज ये तो एक ऐसा फेल है कि जो और मजाहिब के जो लोग हैं ना उनमें भी इसकी इंपॉर्टेंस है ना
जी। निकाह का तो हर मजहब के अंदर
ही, डाइवोर्स जो है, तलाक है, वो दूसरे मजहब में भी है। ये कौन सा तबका आ गया है कि जो तलाक के बाद भी कहे कि जनाब, बल्कि अब यहाँ तो मेरे को तो ये सवाल आपने कर लिया है
जी जी,
यानी कि बाज औकात तो ऐसा होता है कि अगर मर्द खुद कुछ कोशिश करना चाहता है ना तलाक के बाद, बाज औरतें इतनी सास या औरतें इतनी खुफे खुदा वाली और औरतों में इतनी समझ होती है कि वो नहीं रहती, वो समझ जाती है कि मेरा इसके साथ रहना हराम हो जाएगा, मतलब
बहुत मर्तबा होता है ऐसे।
औरत खुद
ज्यादातर ला इल्मी के अंदर इस तरह की बात होती है कि भाई एक दूसरे पे हराम तो हो चुके फिर भी साथ साथ चले जा रहे हैं। हम दारुफ्ता के अंदर इस तरह के मसाइल आते हैं कि भाई हम तो एक मर्द बहुत अरसा पहले 20 साल पहले ऐसी बात हो गई थी लेकिन हमें मालूमात नहीं थी, अभी हमने मदनी चैनल का सिलसिला देख रहे थे उसमें ये बात हुई तो हमें पता चला, ओहो अच्छा ऐसा हो जाता है, अब बताइए हमारा क्या हुक्म है, तो फिर उनको हुक्म बता दिया जाता है। तो ला इल्मी के अंदर तो ये केसेस होते हैं कि एक मसले का पता ही नहीं होता, तो वो ये मैटर नहीं होता कि मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, वहां पर वो उनकी मालूमात ना होने की वजह से मामला
ये बाकी है वो नहीं होता।
यहाँ जो अब्दुल हबीब भाई जो
मुसलमान इस मामले में क्या बेबाकी करे,
उमूमन खानदान के जो बड़े कहलाने वाले उमूमन कहते थे ना यार मौलाना को छोड़ो, अब ये वो कौन हो, ये कौन होते हैं यार हमारे घर का फैसला करने वाले, ये भी है ना असल अपने लाशऊर में जानते हैं, इनके पास गए ना तो जो सही हुकुम है वो पता चल जाएगा। अब इनको जो चीज रोक रही है ना ये बेइज्जती का खौफ,
मेरा ख्याल ये उस तरह के लोग हैं जो टेस्ट नहीं कराते कि टेस्ट कराएंगे तो बीमारी पता चल जाएगी, ऐसे ही लोग हैं ना
ये, मतलब ये इनको हालांकि समझ जाते हैं कि बीमार तो है हम लोग,
गड़बड़ हो गई है,
ठीक है, तो ये हो तो गया है, लेकिन बेइज्जती का खौफ और इस तरह की चंद चीजें होती है जो इन्हें इस्लाम के अहकाम पर अमल करने में रुकावट बनती है।
और इसे कहा जाता है नार पे आर को तरजीह देना,
अल्लाह
नार पर आर को तरजीह देना,
क्या खतरनाक जुमला है।
ये आला हज़रत अली रहमा इस तरह की बात इरशाद फरमाते होते हैं कि भी जब एक चीज हराम हो चुकी, ठीक है, लेकिन अब लोगों के सामने उसको एक्सपोज करना कि भाई ये मामला हो चुका है और हम एक दूसरे पे हराम है, तो इस तरह उनको शर्म आती है, यार हमारे तो बच्चे भी हैं, हमारे तो पोते पोतियां भी हैं, हमारा खानदान भी, अब कैसा बताएं। तो एक तरफ ये
आर है,
आर है, لیکن دوسری طرف نار ہے.
اللہ اللہ
آگ. وہ اس آگ تو وہ اس آر کے چکر میں, شرم کے چکر میں نار آگ کو.
بہت جگہ پر ہے مفتی صاحب, صرف طلاق پہ نہیں ہے, زندگی میں بہت سارے ایسے پہلو کہ انسان سے غلطی ہوتی ہے وہ رجوع نہیں کرتا,
مانتا
نہیں ہے, وہ کہتا نہیں میں ٹھیک ہوں. اور صرف آر پر کیا خطرناک جملہ ہے, واقعی دل پر اللہ کرے لگ جائے کہ واقعی ہمیں نار سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے, اور اگر کوئی ہمیں رجوع کرنا بھی پڑ جائے, کوئی غلطی ہو بھی گئی, اور اس کا بھی سولوشن ہم علماء سے
دیکھنے والے, اگر ہمارا جو سلسلہ دیکھ رہے ہیں یا سوشل میڈیا والے ہمارے اس طرح کی چیز اگر دیکھ رہے ہیں, تو اول یہ کہ وہ یہ سمجھ لیں کہ نہیں یار, اب فائنل یہ ہے کہ شریعت و دین کے معاملے میں ہمیں جو شریعت و دین کی جو اتھارٹی ہے, علماء اسلام, علماء اہل سنت, ہمیں مطلب کہ ان کی طرف ہی رجوع لانا ہے. حضور آپ بڑھ رہے ہیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, اور یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہی تو ہے جو دین سکھا سکتے ہیں, یہی تو ہے جو مطلب کہ ہمیں یہ ساری باتیں بتا سکتے ہیں.